26/12/1994 પૂજ્ય ભાઈશ્રી દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 56
સમયસાર કે 17-18 ગાથા મેં જો અનુભૂતિ હૈ વહી મેં હું એસા આયા હૈ ઓર 15મી ગાથા મેં ભી અનુભૂતિ હૈ વો આત્મા હી હૈ એસા આયા હૈ 15મી ગાથા મેં શ્રુત જ્ઞાન હૈ વો આત્મા હૈ એસા હૈ वहाँ अनुभूति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ श्रुत ज्ञान है वही आत्मा है ऐसा लिया है।
चौथी गाथा में आया है चौथी में जो अनुभूति है वह आत्मा ही है।
किस में आया है?
चौथी गाथा जो आप ले रहे हो।
चौथी गाथा में, चौथी गाथा में तो आया
है,
पंद्रहवीं में लिखा है वो गलती से लिखा है, चौदहवीं ले लेने जब तो ठीक है। चौदहवीं गाथा में अनुभूति है वो आत्मा ही है ऐसा कहा, तो वहां तो शुद्ध नहीं का विषय चला है चौदहवीं गाथा में, तो वहां तो शुद्ध नयात्मक जो अनुभूति है वो बात है, जबकि 17-18 गाथा में वो बात नहीं है। 17-18 गाथा में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में, अबाल गोपाल को अनुभव में आ ही रहा है। हाँ, उसके पहले है, उसके पहले भेद ज्ञान का प्रकरण चला है कि जो भेद ज्ञान में प्रवीण है वो भेद ज्ञान करते हैं तो किस विधि से करते हैं, तो वहां भेद ज्ञान की विधि का स्टेज है, और यहाँ भेद ज्ञान की विधि के फल में जो अनुभूति होती है वो बात है, उतना सा अंतर है। फिर से कि जो भेद ज्ञान का प्रयत्न करता है जिसके फल में शुद्धात्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र की उपपत्ति मैंने उत्पत्ति लिया है, तो पहले भेद ज्ञान है जिसके फल में श्रद्धा ज्ञान चारित्र पैदा होता है, तो वहां प्रयास के रूप में विवरण चला है कि जो भेद ज्ञान में कुशल है तो वो किस प्रकार से किस विधि से भेद ज्ञान करता है, प्रयोगात्मक लेना, परिणमनात्मक, विकल्पात्मक नहीं लेकर के परिणमनात्मक लेना। तो परिणमन में क्या लेंगे कि जो ज्ञान वेदन है सो ही मैं हूं, उस तरह से वो प्रयास करता है, तो उस प्रयास करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे उत्पन्न जो आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान से उत्पन्न जो श्रद्धा, ऐसा ज्ञान पूर्वक श्रद्धा वहां जो होता है, उस तरह से एक विधि का विषय चला है वहां।
जो ज्ञान वेदन है वो पर्याय रूप है, अंतरंग पहलू जो चर्चा
था
सामान्य ज्ञान,
हाँ वो पर्याय रूप, वो पर्याय रूप है।
ये 17-18 गाथा में
भेद, 17-18 गाथा में अनुभूति की बात दो जगह आती है, तो पीछे वाले जो आती है वो तो समूह के लिए आती है, वो उसमें भी ज्ञान वेदन वाली बात है लेकिन अज्ञान दशा में है। यहाँ जो मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, इसकी बात चली। 17-18 गाथा में मोक्षार्थी मैंने जिसको मोक्ष पद का लक्ष्य निर्धारित हुआ हो, पूर्णता का लक्ष्य हो गया हो, वही मोक्षार्थी है। उसके पहले ऐसा लक्ष्य नहीं बंधा हो, उसके पहले सभी जीव संसारार्थी है, कोई मोक्षार्थी नहीं होता है। अनादि से जीव संसारार्थी तो है ही, संसार का प्रयोजन ही साधता है, धर्म करके भी संसार का प्रयोजन साधता है, धर्म साधन करके, बाह्य साधन करके। जब कोई जीव मोक्षार्थी होता है, मोक्ष कामेण ऐसा लिया है, जिसकी मोक्ष की ही कामना है एकमात्र, उसके लिए जिसका प्रयास है, इसको कहते हैं कि पूर्णता का लक्ष्य जिसने बांधा है, वही जीव वेद ज्ञान करने के लिए समर्थ है, उसकी भेद संवेदन शक्ति खुलती है। समय सार की 97 गाथा में ऐसा लिया कि अनादि से जीव की भेद संवेदन शक्ति बिड़ाई गई है, बिड़ाई गई हिंदी में क्या कहते हैं, कुंठित हो गई है, वेद ज्ञान करने की शक्ति कुंठित हो गई है अनादि से। तो इसलिए कोई शास्त्र पढ़ता है पर उसको ऐसा लगता है कि मुझे वेद ज्ञान करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाता है, विकल्प कर लेता है वेद ज्ञान का, लेकिन परिणामात्मक जो प्रयासात्मक जो वेद ज्ञान है वो कर नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है कि उसकी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है। जब कोई भी मोक्षार्थी होता है, मोक्ष का निदान, मोक्ष का निर्धार करता है, लक्ष्य करता है, ध्येय करता है, उनको भेद ज्ञान का वास्तविक प्रयास करने का की सक्षमता आती है, एबिलिटी जिसको कहते हैं, वो एबली नहीं है भेद ज्ञान करने के लिए। इसके पहले मोक्षार्थी हुए बिना या मोक्ष का पूर्णता का लक्ष्य हुए बिना कोई भेद ज्ञान कर नहीं सकता। वेद ज्ञान को समझने का विचार विकल्प कर सकता है, लेकिन कर नहीं, वेद ज्ञान नहीं कर सकता, प्रयोगात्मक नहीं कर सकता। जो मोक्षार्थी है वो वेद ज्ञान करेगा तो कैसे करेगा, इसका विवरण बिल्कुल 17-18 गाथा में है कि इस प्रकार से अगर कोई प्रयोग करेगा तो कि जो अनुभूति है वही मैं हूं, उसको आत्मज्ञान बोला है। उसका आत्मज्ञान से उत्पन्न जो आत्मश्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, ऐसे एक साथ ज्ञान पूर्वक श्रद्धान एक साथ पैदा होता है, तो वहां प्रयोग कैसे होता है वो प्रयोग का विवरण है 17-18 गाथा में। और 14 गाथा में तो जिसको अनुभूति संपन्न जो है, जो शुद्ध नयात्मक है, मैंने निर्विकल्प दशा में जो है उसी का वर्णन लिया है 14 गाथा में। वो शुद्ध नए स्वरूप ही है, वहां नए प्रकट हो गया, उसको वहां नए प्रकट होने की पूर्व भूमिका है, बस उतना अंतर लेना 2 गाथा के बीच में। अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में शुद्ध पर्याय भी अनुभूति वही आत्मा है, तो यहां अनुभूति का क्या अर्थ है। वहां अलिंग प्रवचन सार के 172 गाथा में एक शब्द के 20 अर्थ निकाले हैं आचार्य महाराज ने, अमृतचंद्राचार्य। तो उसमें बात जो 18-19-20 तीन बोल में जो अलग अलग बात है, उसमें गुण भेद का निषेध करके त्रिकाली का आदर किया, पर्याय भेद का निषेध करके भी त्रिकाली का आदर किया, 2 बात तो किया। अगर तीसरी बात नहीं कहते तो जो परखा कहना चाहिए वो रह जाता, तो इसी इरादे से उन्होंने तीसरी बात वो कही कि जो शुद्ध पर्याय है वो शुद्ध पर्याय से नहीं आलिंगित ऐसा द्रव, क्योंकि द्रव द्रव रूप रहता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है, क्योंकि सारा जो ज्ञे अधिकार है वो द्रव गुण पर्याय का जो द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को है उसको खोलने का अधिकार चला है। ज्ञे अधिकार माने क्या, कि सम्यक ज्ञान में पदार्थ किस रूप ज्ञे होता है इसका अधिकार, जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको अपने ज्ञान में पदार्थ का ज्ञान द्रव गुण पर्यायात्मक किस तरह होता है, किस तरह झलकता है, ज्ञेय रूप पदार्थ कैसा होता है वो बताने के लिए ज्ञेय अधिकार ज्ञान प्रधानता से लिखा है। उसमें ये 172वीं गाथा जो है उसमें वो बात चली कि आत्मा जो शुद्धात्मा है वो तो किसी लिंग से किसी चिन्ह से पहचाना नहीं जाता। उसके अलग अलग कर विवेक्षा के अर्थ करते हुए कि 20वें बोल में वो कह रहे हैं कि जो अनुभूति रूप जो शुद्ध पर्याय है वो तो अनुभव में आती है, मैंने भोगने में आती है, तो उतना ही हमारा आत्मा है। उतना आत्मा कहकर के त्रिकाली सामान्य को भी वहां गौण किया है, त्रिकाली सामान्य को गौण किया है। अब देखिए कि हम कभी द्विकाली को गौण नहीं करते, पर्याय को ही गौण करते हैं, जबकि शास्त्र में ऐसी विवक्षा आती है कि यहाँ त्रिकाली गौण है और पर्याय मुख्य है, तो वहां क्या समझे हम कि वहां वेदन की प्रधानता से बात चल रही है। एक दृष्टांत लेते हैं कि एक आदमी के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति है, लोग कहते हैं कि सभी संपत्ति का मालिक वो है, वो उसकी पूरी की पूरी संपत्ति अकेले उसकी ही है, लेकिन उसकी संपत्ति कितनी की जितनी भोगे उतनी, बाकी की उसकी नहीं, क्योंकि वो तो पड़ी रहने वाली है। ऐसे जितना अनुभूति में आनंद आया उतना ही हमारा आत्मा है, बाकी का आत्मा का हमें क्या प्रयोजन है, ऐसा कहते हैं आचार्य महाराज, वो तो पड़ा रहने वाला है।
इसमें पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती?
नहीं होती। पर्याय दृष्टि कब होती है कि कोई जीव वर्तमान विभाविक पर्याय मात्र रूप अपनी कल्पना करता है या अपने को अवधारण कर लेता है। पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, उनको तो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई नहीं, शुद्ध पर्याय तो द्रव्य दृष्टि वाले को ही प्रकट हुई है। तो जिसको यहां तो शुद्ध पर्याय का कथन चला है कि द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी जो शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। द्रव्य कौन कौन सा द्रव्य? त्रिकाली द्रव्य बताने के लिए परिभाषा शास्त्र की है कि जो अन्वय रूप है। अन्वय रूप है मैंने कैसा है कि जो प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत है, ऐसा शब्द लिया है। प्रत्यभिज्ञान में वो का वो, वो का वो, वो का वो, वो का वो, वो का वो। जैसे काल एक भाई मिले थे, आज भी मिले, वो कल वाले ही मिले हैं, दूसरा नहीं है, तो इस आदमी का प्रत्यभिज्ञान हो गया कि जो कल मिला था वही आज हमको मिला। ऐसे जो कल द्रव्य था वही आज है, ऐसा द्रव्य सामान्य है, उनको प्रत्यभिज्ञान का विषय बोला जाता है। वो प्रत्यभिज्ञान का विषय रूप जो त्रिकाली द्रव्य सामान्य है, वो तो वैसा का वैसा रहता है, वो तो भोगने में आता नहीं, वो अवलंबन का विषय होता है। लेकिन अवलंबन का मतलब क्या कि भाव में मैं हूं ऐसा भाव होना, लेकिन पर्याय तो द्रव्य रूप होती नहीं, पर्याय रूप रहती है इस वक्त, इसलिए पर्याय अलिंगित नहीं है द्रव्य से, ऐसा कहा वहां। और जितना भोगने में आया आनंद आदि उतना ही अपना अपना माल है, बाकी का माल अपना कहाँ है, ऐसा बताने के लिए वो बात है। इसलिए वेदन की प्रधानता से वो बात है, वेदन की प्रधानता से वेदन को गौण नहीं कर सकते, लक्ष्य और आश्रय की प्रधानता से वेदन को और पर्याय को गौण कर सकते हैं। त्रिकाली का लक्ष्य करने के लिए और त्रिकाली का आश्रय करने के लिए हम पर्याय को वेदन को गौण कर सकते हैं, लेकिन वेदन की मुख्यता होती है वहां त्रिकाली भी गौण होता है, वहां वेदन की मुख्यता को छोड़ नहीं सकते, जहां वेदन की मुख्यता का विषय चलता है वहां। तो यहां वेदन की मुख्यता का विषय चला है विश्वमय बोल में, और गुरुदेव ने वो बात कही परमागम सार के 514 नंबर के बोल में और 541 नंबर के बोल में, वचनामृत में दोनों जगह वो बात आई है कि यहां वेदन की मुख्यता की बात चलती है, तो वेदन को ऐसे गौण नहीं किया जा सकता, ये शुद्ध पर्याय है, इसको गुण ऐसा नहीं किया जा सकता, भोग तो इसका होता है, उसको भोगने में आते हैं, द्रव्य को भोग नहीं सकते। तो ऐसा भी एक विवक्षा जो चलती है वो शुद्ध पर्याय के लिए सम्यक है, वहां पर्याय दृष्टि होने का कोई सवाल नहीं होता है। पर्याय दृष्टि तो विभाविक पर्याय को अपने रूप मात्र उदाहरण कर लेना, उसी का नाम, उसी कल्पना का नाम पर्याय दृष्टि है। तो वहां ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह तो शुद्ध पर्याय है, दृष्टि तो त्रिकाली पर ही रहती है, लेकिन बात वेदन की प्रधानता से चलती है। तो वेदन की प्रधानता की बात चलती है, वहां वेदन को गौण नहीं किया जा सकता, वहां त्रिकाली को गौण किया जा सकता है। ये विश्वी बोल पर गुरुदेव का आखिर का प्रवचन मलाड़ में आया था। मलाड़ में वैशाख सुद बीज जो जन्म जयंती का प्रसंग चल रहा था, आखिर के वो प्रवचन थे। बाद में 4-5 महीने प्रवचन फिर बीमारी के हिसाब से बंद हो गया था, लेकिन आखिरी प्रवचन वहां हुआ था मलाड़ में। बहुत सुंदर प्रवचन आया है इस विषय पर, फिर किसी के पास कैसेट हो तो सुन लेना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रवचन आया था, हम उपस्थित थे। ऐसा प्रवचन कभी हमने सूक्ष्म प्रवचन नहीं सुना, ऐसा प्रवचन आया था। हाँ, द्रव्य को गौण कितना किया था गुरुदेव ने, कितना द्रव्य को गौण करते थे और कितना पर्याय को मुख्य करते थे वेदन के हिसाब से, वेदन के कारण से। यह आपने परमागमसार रेफरेंस बुक में नहीं है, लेकिन हम निकाल करके थोड़ा उस पर भी स्पष्टीकरण दे देते हैं, अगर कल किसी के पास हो तो ले आना। यहाँ कोई अपने कामनगर में किसी के पास मिल जाएगा तो ले लेना। निवृत्ति क्षेत्र में प्रैक्टिकल परिणाम क्या प्रकार होवू जोईए? निवृत्ति क्षेत्र में के प्रवृत्ति क्षेत्र में प्रैक्टिकल तो करवो जोईए, प्रैक्टिकल न करवो होय એને માટે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય નિરર્થક જશે। જિસકો પ્રયોગ કરના હો સુન કરકે પઢ કરકે ઉનકે લિયે હી સુનના પઢના સ્વાધ્યાય સાર્થક હો સકતા હૈ, જિસકો પ્રેક્ટિકલ નહીં કરના હૈ ઉસકે લિયે વો વ્યર્થ કી બાત હો જાયેગી। ચાહે હમ પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્ર મેં હો ચાહે નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર મેં હો, પર પ્રેક્ટિકલ માને ક્યા, યાને किस तरह से करना है? कि जो बात हमारी समझ में आई हो हमारी योग्यता अनुसार, उस बात को परिणमन में लागू करने का प्रयास करना, टू अप्लाई द थियोरी इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की ये परिभाषा है कि थियोरी को लागू एप्लीकेशन करना, उसका अमलीकरण करना, जो बात हमारी समझ में आई है उसका हम अमल करने का प्रयास करें, उसको हम प्रैक्टिस कहते हैं और उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। तो उस तरह से जो जिसकी योग्यता में समझ में आई हो उसको लागू करने का प्रयास करें, तभी वो बात खरी समझ में आएगी, यानी भावभाषण पूर्वक समझ में आएगी, वरना शब्दार्थ और भावार्थ तो समझ में आ ही जाएगा किंतु उनका भाव भाषण होगा नहीं, ये बात हो जाएगी। शब्दार्थ भावार्थ का ज्ञान होना समझ होना एक बात है, भाव भाषण होना बिल्कुल दूसरी बात है। भाव भाषण प्रैक्टिकल ज्ञान बिना कभी किसी को आता नहीं है। सत्संग करवानी बात करी तो सत्संग कोनो करवो ने केवी रीते करवो? सत्संग गुणी जन का करना, जो अपने से गुणवान हो उसका करना, और सत्संग उसका करना जिसको आत्मकल्याण को किसी के अंतर से भावना हो उसका करना, क्योंकि हमें भी आत्मकल्याण के लिए सत्संग करना है। तो जिसको आत्मकल्याण करना है वो एक विचार वाले होते हैं, एक मार्ग में चलने वाले होते हैं, वो सत्संग के योग्य होते हैं, उसी के साथ सत्संग करना। और किस तरह से करना, कि अपने उदय भावों में विरक्त होकर के रसमंद करके, उदय के परिणामों में, उदय के प्रसंगों में रसमंद करके, सरलता से सत्संग करना चाहिए। सरलता माने क्या? कि अपने दोष के परिणाम को भी हम निवेदन कर सके, अगर उतनी सरलता आएगी तो अपना अहम भाव छोड़ने के लिए विनम्रता भी आएगी, सरलता आएगी तो नम्रता आएगी, सरलता आएगी तो जो भी मुद्दे की चर्चा सत्संग में निकलेगी उनमें चर्चा करने में मध्यस्थता भी आएगी। और जो तत्व की विशालता है वो विशालता को ग्रहण करने के लिए विशालता की भी प्राप्ति होगी ज्ञान में। ज्ञान में विशालता हो, नम्रता हो, सरलता हो, ऐसे परिणामों के साथ सत्संग की उपासना करने में आती है तो अवश्य उसका आत्म प्रत्ययी फल कुछ न कुछ रूप में आने की संभावना है। और जब हम सरलता से अपने दोषों की चर्चा करेंगे तो आपस में आत्मीयता भी रहेगी। मुमुक्षु मुमुक्षु साधर्मी जन है तो साधर्मी जन के प्रति परस्पर स्नेह और प्रेम और आत्मीयता होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर उतना ही हमारे में परिणाम का प्रकार नहीं है तो हम सत्संग के योग्य नहीं है, ये बात अवश्य समझनी चाहिए। हम तो कभी मुमुक्षु मुमुक्षु में आपस में प्रेम की जगह कोई दूसरी बात सुनते हैं तो हमको तो दर्द हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। आपस में जैसे कोई प्रियजन मिलते हैं तो कितना प्रेम आता है, आंखें हंसती है, मुंह हंसता नहीं आंखें भी हंसती है, वैसा मुमुक्षु के प्रति उतना होवे तो सत्संग योग्य होते हैं, वरना सत्संग के भी योग्य नहीं है हम। तो इस तरह से सत्संग की उपासना जो है उसमें आत्महित के आत्म कल्याण के जितने भी पहलू है उनको समझ करके सत्संग की उपासना करनी चाहिए। हाँ वात्सल्य, हाँ शुरू, हाँ शुरुआत वहां से, वरना तो वात्सल्य के बिल्कुल उड़ जाएगा, वात्सल्य ही नहीं रहेगा। और जब वात्सल्य निकल जाएगा तो सज्जनता रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी एक सवाल हो जाएगा, वो बात हो जाएगी। उपयोग को सूक्ष्म करके अंतर की गहराई में जहां चैतन्य के असंख्य प्रदेशों में उपयोग पर्याय है वहां के पर्याय के समीप ही अंदर चैतन्य का जो ध्रुव तल है उसमें दृष्टि स्थापित कर वहां पहुंचने पर सम्यक दर्शन और स्वानुभूति होती है। कृपया इन वचनों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वास्तव में तो आपका जो प्रश्न है वो उपस्थित करें तो अच्छा रहेगा, वरना तो क्या है कि कहीं किसी भी वचनामृत पर किसी भी ग्रंथ पर अपन प्रकाश डालने जाएंगे तो एक प्रवचन शैली हो जाएगी जो सुबह चलती है। अब जो हमारा समय है वो शंका समाधान का है, अपने को कोई प्रश्न है आगे बढ़ने में या विचार करने में या प्रयोग करने में तो उसको विशेषकर हमें शंका के आशंका के रूप में रखेंगे तो उसका समाधान करने में अपन को ज्यादा लाभ होगा। बाकी तो अनेक शास्त्र हैं, अनेक ज्ञानियों के वचनामृत हैं और उस पर स्पष्टीकरण देते रहेंगे तो और बात हो जाएगी। इसलिए प्रश्न का जो प्रकाश प्रकार है वो मुख्य करके ऐसा रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये उपयोग को सूक्ष्म करने की बात है, अंतर में गहराई में जाने की बात है, वो तो जिसको आत्मरुचि प्रकट हुई हो, आत्म कल्याण करने की तीव्र जरूरत लगी हो, उस जरूरत में से जो रुचि उत्पन्न होती है वह उपयोग स्वतः ही सूक्ष्म हो जाता है और वो उपयोग भीतर की गहराई में अंतर की गहराई में जाने के लिए सक्षम होता है। और वहां पर्याय के समय पे अंदर चैतन्य का जो ध्रुव तल है उसमें दृष्टि स्थापित कर, वो तो बाद स्वरूप निश्चय होने के बाद होता है, उसके पहले सीधा सीधा कोई प्रयोग करता है तो नहीं होता है। वो स्वरूप लक्ष्य जिसको हुआ हो उसकी बात होनी चाहिए, उसमें दृष्टि स्थापित करना। मैंने दृष्टि अस्तित्व को ग्रहण करती है, मैं हूं ऐसा आश्रय भाव ये दृष्टि का कार्य है, और ऐसा जब होता है तो दृष्टि स्थापित हो जाती है, और ऐसे होने से सम्यक दर्शन, दृष्टि स्थापित हुई वही सम्यक दर्शन है, और उस काल में जो स्वसंवेदन आया वही स्वानुभूति है। सत्संग एटले सत्स्वरूप आत्मा, एनो संग करवो, अने सत्संग एटले साधर्म एनो संग करवो। ऊपरना बन्ने अर्थ बराबर छे के नहीं, अने बन्ने अर्थ प्रमाणे शुं प्रवृत्ति करवी योग्य छे ते समझावो। सत्संग ना बन्ने अर्थ तो दोनों अर्थ बराबर है, सत्संग मैंने सत्स्वरूप आत्मा का संग करना उसको भी सत्संग कह सकते हैं, अर्थघटन करने में कोई दोष नहीं है, और साधर्मी जन का संग करना उसको भी सत्संग कहते हैं, वो अर्थघटन करने में भी कोई दोष नहीं है, दोनों अर्थ हो सकता है। अब प्रवृत्ति क्या करना है कि पहले तो हम साधर्मी के सत्संग में रहेंगे तब हम सत्स्वरूप आत्मा का संग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके पहले सीधा कोई आत्मस्वरूप का संग करने को जाए तो ये कभी नहीं बन सकता, बिना सत्संग ये हो सकता नहीं है, ऐसा जानना। अमे बीजा साधर्मीनो संग करिए छे त्यारे घणीवार सत्संग कर्यो पण सत्संगमां हित थवाने बदले टाइम बगड़े छे एवुं लागे छे, अने अमारी पासे टाइम थोड़ो छे એટલે સ્વતંત્ર રીતનો સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, અને શિબિર ગોઠવાય ત્યારે પ્રવચનમાં જઈએ છીએ, તો ઉપરની પ્રવૃત્તિ યોગ્ય છે। બીજા સાધર્મીનો સંગ કરીએ છીએ, દૂસરે સાધર્મી કા સંગ કરને છે, ઉસ વક્ત સત્સંગમાં હિત હોને કે બજાય હમારા સમય ખરાબ હોતા હૈ એસા લગતા હૈ। ક્યું એસા લગતા હૈ उसका कोई कारण नहीं दिया है लिखने वाले ने, अगर कोई उपस्थित हो तो बता देना कि ऐसा क्यों आपको लगता है। जब हम दूसरे साधर्मी के सत्संग में जाते हैं तो हमारा समय बिगड़ता है, ऐसा लगने का क्यों, क्या कारण है? या तो वहां सत्संग में आत्महित का विषय नहीं चलता होगा, या तो जो सत्संग हो तो इसलिए जहां हमारा आत्महित हो उसी प्रकार के सत्संग में जाना चाहिए। आत्महित होवे उस प्रकार का भी, क्यों कि शिविर तो कुछ कुछ टाइम में लगती है, खुराक है, जैसे आदमी को रोज खुराक चाहिए, खाना पीना श्वास लेना वो चाहिए, तो इससे ज्यादा जरूरत हमको सत्संग की महसूस होनी चाहिए, इसलिए योग्य सत्संग खोज करके सत्संग में रहना ये ज्यादा मुमुक्षु के लिए लाभदायी है। और ऐसा सत्संग के बाद भी कोई हमारे पास समय बचता है तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन सत्संग को गौण करके स्वाध्याय करना वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, ऐसा समझना चाहिए। સવારના સ્વાધ્યાયમાં આવેલું જે તન મન ધનનું સમર્પણ સહેલું છે, પરંતુ પ્રકૃતિનું સમર્પણ થવું જોઈએ। ઉપરોક્ત વચનના સંદર્ભમાં મારા પરિણામના અવલોકન કરવાથી એવું સમજાય છે કે મને મનનું સમર્પણ સહેલું નથી પડતું। ખરેખર મનનું સમર્પણ કોને કહેવાય? મનનું સમર્પણ સહેલું નથી પડતું એમાં શું પ્રકારની સમજણ છે, અથવા મનનું સમર્પણ કોને કહેવાય એ પ્રશ્ન ઉપરનું સહેલું નથી પડતું એ વાત આવ્યા પછી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ છે? યથાર્થમાં આવવા અર્થે માર્ગદર્શન આપવું. અચ્છા, મનનું સમર્પણ સહેલું નથી એ શેના ઉપરથી લાગ્યું? કેમ કે નીચે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે મનનું સમર્પણ કોને કહેવાય, તો મનનું સમર્પણ અમુક વાતને કહેવાય, અમુક પ્રકારને કહેવાય, એ માટે સહેલું કે અઘરું એમ નક્કી થયું ને? નહીતર અઘરું સહેલું કેવી રીતે નક્કી થયું? થોડો પ્રશ્નમાં ફરક પડે છે. અચ્છા, મનનું સમર્પણ કોને કહેવું? મનનું સમર્પણ એ છે કે પોતે પોતાની ઈચ્છાને ગૌણ કરીને સત્પુરુષની ઈચ્છાને મુખ્ય કરે, પોતાની ઈચ્છાને ગૌણ કરીને જ્ઞાની પુરુષની ઈચ્છાને મુખ્ય કરે, તો એણે પોતાના મનનું પણ સમર્પણ કરી દીધું કે મારા મનમાં તો આમ ઉગ્યું હતું પણ એમ હવે નહીં, આપ કયો એમ કરવું છે. જેમ તનનું સમર્પણ કરે તો શારીરિક સેવા આપે, ધનનું સમર્પણ કરે તો ધનની સેવા આપે, ધન સમર્પણ કરે, ધનનું દાન કરે. એમ મનનું સમર્પણ પોતાની ઈચ્છાને ગૌણ કરે, પોતાના મનને ગૌણ કરી નાખે, ત્યાં સુધી સહેલું છે, વહાં તક હો સકતા હૈ. લેકિન પ્રકૃતિ કો છોડના ઉતના આસાન નહીં હૈ. વો પ્રકૃતિ કો છોડના તો કબ હોતા હૈ કે જબ આત્મકલ્યાણ કી સહી યથાર્થ ભાવના હોતી હૈ, તો સીધા પ્રકૃતિ પર અસર આતા હૈ. વો પ્રકૃતિ ઉસકી જોર નહીં કર સકતે, યા ઉનકો યે લગતા હૈ કે હમ પ્રકૃતિ કે વશ પરિણમન કરેંગે તો હમારા ભવ ભ્રમણ કભી મિટેગા નહીં. એસા લગને સે પ્રકૃતિ કો છોડને કે લિયે અભિપ્રાય મેં જો આ જાતા હૈ ઉસકો કહેતે હૈ કે પ્રકૃતિ કા ભી સમર્પણ કરને કે લિયે વો તૈયાર હૈ. અબ દેખિયે કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં જિસકી જો પ્રકૃતિ હોતી હૈ વો અપને કો એસા હી માનતા હૈ કે દેખો ભઈ હમ તો ગુસ્સે વાલે હૈ, હમારે સાથે એસી બાત હોગી તો હમ હમારા તો ગુસ્સા કંટ્રોલ મેં નહીં રહેગા, એસા બોલતે હૈ ને આદમી. તો વો અપને કો માનતા હી એસા હૈ દ્રષ્ટાંત કે રૂપ મેં કે હમ તો ગુસ્સે વાલે હૈ. તો મતલબ વો જો પ્રકૃતિ હૈ ઉસકો હી આત્મા માનતે હૈ, તો યહ આત્મસમર્પણ હો ગયા. આનંદન જી ને ગયા ને કે સચ્ચી પૂજા કિસકો કહેતી હૈ કે આત્મ અર્પણા કો પૂજા કહેતે હૈ, આત્મા કો જો અર્પણ કરતા હૈ, આત્મા કો અર્પણ કરતા હૈ મેને કે અપની પ્રકૃતિ છોડ કરકે વર્તુ ચરણાધીન, વર્તુ ચરણાધીન માં વો બાત હૈ, પ્રકૃતિ છોડ કરકે બાત હૈ, છોડ કરને કી બાત હોતી હૈ. લેકિન મન એમાં શું છે, પ્રકૃતિ કે ભાવ કે સાથ મન જોડા હુઆ હૈ, પરંતુ ઇસકે અલાવા ભી મન કી તો પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ, અનેક પ્રકાર કી ઈચ્છા હોતી હૈ, વો મન હૈ. હમારા મન મેં તો આજ હૈ છે કે હમકો તો આજ ખીર ખાના હૈ, લેકિન પ્રકૃતિ એસે નહીં હોતી હૈ, પ્રકૃતિ તો હમારી ખીર ખાને કે નહીં, લેકિન આજ મન હુઆ હૈ. તો મન કી બાત અલગ હોતી હૈ, પ્રકૃતિ કી બાત અલગ ભી હો સકતી હૈ. એસા એક પ્રકૃતિ કે અધીન મન હોતા હૈ જ્યાદા, તો મન કે અધીન પ્રકૃતિ નહીં હૈ, પ્રકૃતિ કે અધીન મન હૈ. પ્રકૃતિ ગુરુદેવ કિયાન સો આત્મ બસે, સબ સમર્પણ કર દિયા, પૂરા સમર્પણ, હમારે કુછ ચીજ નહીં હૈ.
મનમાં એમ થઈ શકે કે વિભાવવાદી સ્વભાવ તરફ જવા તો મનના વિચાર અર્પણ કરી શકાય?
स्वभाव में से विभाव तरफ जाने का प्रयोग तो भेद ज्ञान के काल में होता है। तो भेद ज्ञान की स्टेज में जो अपने मोक्ष आया हो उसके लिए वो बातें होती हो सकती है, जब वो स्टेज में आ चुका हो। अगर वो स्टेज में नहीं आया तो वो बात ही बात रह जाएगी, विकल्प रह जाएगा और कुछ नहीं। टोडर मुर्जी ने लिखा है कि ज्ञानोपयोग एक समय में एक को या पर को, स्व को या पर को जानेगा। छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक पर एक छद्मस्त का ज्ञान एक समय में स्वपर प्रकाशक नहीं हो सकता है। कृपया इस विषय को स्पष्ट कीजिए। छद्मस्त का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, स्व का वेदन रूप प्रकाशक है और पर का जानने रूप प्रकाशक है। उपयोग की बात अलग होती है। उपयोग हो सकता है स्व का या पर का, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन ज्ञान दोनों का एक साथ हो सकता है। कई लोग इस विषय में ऐसा समझते हैं कि उपयोग जितना ही हमारा ज्ञान का पर्याय है, परंतु ऐसा नहीं है। उपयोग के अलावा लब्ध पर्याय भी काम करती है ज्ञान की, वो भी ज्ञान की पर्याय है। इसलिए ज्ञान की पूरी पर्याय लब्ध उपयोगात्मक है, केवल उपयोगात्मक नहीं है। जैसे हम दृष्टांत लें कि ज्ञानी शास्त्र पढ़ते हैं तो इसका उपयोग शास्त्र पढ़ने में है। उसमें कोई कथानुयोग की बात आती हो तो कथा भी कर लेते हैं कि रामचंद्र जी ने ऐसा कहा, भरत जी ने ऐसा किया, पांडवों ने ऐसा किया, ये बात आएगी। तो उपयोग वहां शास्त्र की कथा पर है। तो क्या वो पर कोई जानते हैं? वहां स्व का ज्ञान का अभाव हो गया, आत्मज्ञान का अभाव हो गया क्या? कि बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो मिथ्या दृष्टि, आत्मज्ञान रहित हो जाते हैं। तो आत्मज्ञान वहां किस रूप में चालू है कि वहां लब्ध परिणति के रूप में आत्मज्ञान चालू है। भले वो ज्ञानी छद्मस्थ है लेकिन वहां स्वपर प्रकाशक ज्ञान उसका होता है। उपयोग चाहे स्व में हो तो भी स्वपर प्रकाशक है, और उपयोग पर में हो तो भी स्वपर प्रकाशक है। स्वमय उपयोग है तब पर का अभाव रूप ज्ञान है कि मेरे में पर नहीं है। पर का नास्तिवाचक ज्ञान वहां होता है लेकिन उपयोगात्मक नहीं होता है। ज्ञान होता है, उपयोगात्मक नहीं होता है। इसलिए केवल उपयोग को ही ज्ञान के पर्याय रूप में स्वीकार करना वो ज्ञान के पर्याय की अधूरी समझ है या सही समझ नहीं है।
लेकिन जिसने आज तक स्वयं उपयोग लगाया ही नहीं फिर उसका लब्धि में स्वयं का ज्ञान है, ये कैसे संभव है?
जो सामान्य ज्ञान वेदन है उसमें पर कहां है? क्यों कि वेदन पर का हो ही नहीं सकता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। जैसे पर का कर्ता को हो ही नहीं सकता, ज्ञानी या अज्ञानी का हो सकता है क्या? तो भोक्ता भी नहीं हो सकता। जो कर्ता नहीं हो सकता वो भोक्ता भी नहीं हो सकता। भोक्ता होना नहीं होना मतलब वेदन नहीं कर सकता। भोगना और वेदन करना वो तो एक ही बात होगी। तो कोई ज्ञानी या अज्ञानी पर का वेदन कर ही नहीं सकता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अबाल गोपाल को अनुभव में आ ही रहा है, वो स्व का प्रकाशन है। और पर प्रकाशन तो अज्ञान अवस्था में चालू ही है, वो तो मानता ही है कि मैं पर को जानता हूं, जबकि स्व पर प्रकाशक वहां भी चालू है। स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते भेद बहुत भार भ्रम भारी, उस विषय में बहुत भ्रमणा होती है। क्योंकि कई प्रकार के ज्ञान के विषय में शास्त्र में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, बहुत विविक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। कभी ज्ञान के विषय में ऐसा बोला जाता है ज्ञान पर को जानता ही नहीं, कभी बोलता है कि स्वपर प्रकाशक है वो ज्ञान, अज्ञानी को कभी ऐसा कहेंगे वो एकांत पर प्रकाशक है क्योंकि स्व को भुला हुआ है। तो कई प्रकार की बातें आती है। इसलिए गुरुदेव के जो प्रवचन हुए समय सार के, उसमें जो स्वपर प्रकाशक का विषय आया है उनका एक अलग संकलन किया है, वो बड़ौदा से वो गुरुवाणी के नाम पर प्रकाशित हुआ है, गुरुवाणी भाग एक और दो। उन्होंने 11 भाग में से स्वपर प्रकाशक शक्ति विषय जितने भी गुरुदेव के वचनामृत थे उनका संकलन करके नई किताब निकाली है। तो वो पढ़ने से बहुत भाग तो समझ में आता है, नहीं समझ में आवे तो सत्संग में चर्चा उसकी करके उसका स्पष्ट समझ कर लेना चाहिए। अच्छा, आपकी जो बात थी कि उपयोग पूर्वक लब्धि होती है, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई लब्धि का भी उपयोग होता है। हाँ, लब्धि का उपयोग कैसे होता है बताएं आप। जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी वक्त केवल ज्ञान की लब्धि होती है, जबकि उपयोग केवल ज्ञान का नहीं हुआ कभी, वो लब्धि पूर्वक बाद में होने वाला है। ऐसे ज्ञान की अनेक प्रकार की जो चमत्कारिक लब्धियां होती है वो पहले लब्धि होती है, उपयोग बाद में होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की लब्धियां होती है श्रुत ज्ञान के, तो वो पहले लब्धि होती है उपयोग बाद में होता है, ऐसा भी होता है। और जो लब्ध परिणति रूप में ज्ञान होता है वो एक्वायर्ड नॉलेज होने से पहले उपयोग होता है फिर लब्ध होता है, वो प्राप्त ज्ञान बोला जाता है, उसको प्राप्त ज्ञान बोला जाता है। जैसे कि हम अभी तत्व चर्चा कर रहे हैं, उस इस वक्त भी हमारा जो जो बिजनेस है उस बिजनेस का हम अच्छी तरह प्राप्त ज्ञान है, लब्ध ज्ञान चालू है हमारा, वो ज्ञान हमारा चला नहीं गया कि हम बिजनेस कैसे करेंगे, वो हम भूल नहीं गए, वो ज्ञान चालू रहता है। जैसे बहने रसोई बनाती है तो तत्व चर्चा करने में भी उनका उपयोग चलता है, लेकिन रोटी कैसे पकानी, सब्जी कैसे बनानी, खिचड़ी कैसे पकानी, वो ज्ञान उनमें चालू है, वो लब्ध ज्ञान उसमें चला नहीं गया, वो प्राप्त ज्ञान होता है लेकिन उपयोगात्मक नहीं है। तो ऐसे उपयोग पूर्वक लब्ध होता है वो भी बात सही है, कभी लब्धि पूर्वक भी उपयोग होता है ये भी बात सही है। जहां जो प्रकरण है वो समझ लेना चाहिए। ना तो जो त्रिकाली केवल ज्ञान स्वरूप है उनको विजुअलाइज करते हैं, वो बात है। मैं गुरु बलदेव का वचनामृत है वहां वो बात है। लब्धि एटले प्राप्ति, अपने एना ऊपरथी गुजराती में शब्द है वो लाभ, अपने लाभ कही, हमने लाभ थियो आटलो, एने संस्कृत भाषा में लब्धि थी एम कहवाय छे, मूल संस्कृत शब्द छे लब्धि छे। पछी प्रकरण अनुसार एना जुदा जुदा अर्थ है, पण लब्धि नो सीधो अर्थ छे प्राप्ति, लब्धि एटले प्राप्ति। पछी कई रीते कोनी केवी रीते प्राप्ति ए वात पछी बीजो प्रकरण खुली जाय छे त्यांथी, पण लब्धि नो सीधो अर्थ प्राप्ति थाय छे। सो उपयोगात्मक जो हाँ ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो मनोपरिय ज्ञान है वो अंश प्रत्यक्ष है, इसलिए जब जब वो होता है उपयोगात्मक होता है, लेकिन उसकी लब्धि पहले प्रकट हो जाती है, उपयोग बाद में होता है। जो मुनि दशा में साधना की निर्मलता के कारण कोई कोई मुनि को मनोपरिय ज्ञान की पहले लब्धि होती है बाद में वो कभी कभी इसका उपयोग करता है तो दूसरे के मन के भाव को जान लेता है, तो उपयोग करता है तब जान लेता है, उपयोग रखता है तब, उपयोग उसका नहीं गया किसी के मन पर तो उस वक्त उसकी प्रवृत्ति उपयोगात्मक नहीं रही, लेकिन लब्धि चली नहीं गई, लब्धि तो रहती है उसको, तो उस तरह से वो लब्धात्मक भी है और उपयोगात्मक भी है, इस तरह से दोनों प्रकार से है, ऐसा समझना चाहिए। पंडित तोडरमल जी ने मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप बतलाया है, तो क्या मिथ्यात्व रूपी बड़े पाप को त्याग होने के बाद भी ज्ञानी के सप्त व्यसन का सेवन पाया जा सकता है, या मिथ्यात्व के अभाव के साथ सप्त व्यसन के सेवन का भी अभाव हो जाता है? सप्त व्यसन का सप्त व्यसन रहता नहीं, मिथ्यात्व अवस्था में व्यसन के परिणाम होते हैं। ज्ञानी मुक्त हो गए हैं, प्रकृति से मुक्त हो गए हैं, तो व्यसन से तो मुक्त हो ही गए हैं, इसलिए ज्ञानी को एक भी व्यसन नहीं होता, व्यसन अज्ञानी को ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत एकत्व का परिणाम होता है। व्यसन के परिणाम जो होते हैं उसमें तीव्र एकत्व रहता है, इसलिए वो अज्ञानी को ही रहते हैं, ज्ञानी को नहीं रहता है। और कोई प्रश्न है इसमें? नहीं है, आपका है ना? हम थोड़ा और स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, इसलिए आपका तो प्रश्न नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि युधिष्ठिर क्षायिक सम्यक दृष्टि चरम शरीरी थे, उसने जुआ कैसे खेला? सप्त व्यसन में एक जुआ भी व्यसन है, जुगार जिसको गुजराती में कहते हैं, तो ज्ञानी जुआ खेलते हैं क्या? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं? ठीक, हमने नहीं उठाया है, लेकिन थोड़ा और स्पष्टीकरण दे दें कि जुआ के परिणाम तो अवश्य हुए पर जुआ खेले भी, लेकिन व्यसन नहीं था क्या? जुआ के खेलने के चारित्र का परिणाम हुआ, लेकिन व्यसन के रूप में नहीं हुआ। व्यसन के रूप में परिणाम कैसे होते हैं कि मानो के एक मनुष्य को जुआ खेलने का व्यसन हो गया है, तो उनको नहीं मिलेगा तो चैन नहीं पड़ेगा, वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके गौण करके दूसरे दूसरे काम को गौण करके जुआ खेलने के लिए लालायत हो जाएगा, उसको लगन रहा करेगी, वो व्यसन के परिणाम है। ऐसे परिणाम बार बार उनको आते ही रहेंगे, जब वो जुआ नहीं खेलेगा तो भी आते ही रहेंगे, जबकि ऐसे व्यसन के परिणाम ज्ञानी को नहीं होता। कभी खेल लिया अलग बात है, वो चारित्रमों का दोष है, लेकिन वो व्यसन के रूप में नहीं हुए परिणाम, ऐसा होता है। व्यवहारिक अनिति है, नीति के प्रकरण में वो अनिति है।
मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, फिर भी इसको 18 नंबर क्यों दिया?
छोटे मोटे पाप जो है वो सब बता दिए, और इसके सबसे बड़ा पीछे लिख दिया। लिखने वाले का हेतु तो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने क्यों पीछे लिखा? क्यों के दोनों प्रकार की पद्धति है, पहले स्पष्टीकरण दे करके भी विस्तार कर सकते हैं, और विस्तार करके बाद भी इसका सारांश दे सकते हैं। कभी सारांश पहले दिया जाता है फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं, कभी पूरा स्पष्टीकरण देके भी सारांश किया जाता है, तो दोनों प्रकार कथन में तो संभवित है। फिर भी कहीं भी आगे पीछे लिखने का हेतु भी होता है, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष हो तो मालूम पड़े कि इसमें आपका कोई हेतु खास हेतु है क्या, या वैसे ही नॉर्मल परिस्थिति में लिखा है, वो तो लिखने वाले को ही पता चल सकता है, अपन तो नहीं बता सकता पूरा पूरा। या उसमें कोई नियम नहीं है कि पहले ही लिखना चाहिए या पीछे नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं।
सबसे खराब पाप है, 13-17 पाप से भी ज्यादा खराब है, फिर भी इसको लास्ट नंबर है, इसलिए सामान्य जनता को 18वां पाप समझ का बहुत से ख्याल नहीं है इसलिए।
हाँ, वो विषय में आम जनता को कम ख्याल है वो बात जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट कारण तो नहीं बता सकते। पूज्य गुरुदेव श्री ने नानी माने, बीजा ज्ञानी ने अज्ञानी माने, ते मुमुक्षु ने पूज्य गुरुदेव श्री ने ओळखाण बराबर कहवाय, अथवा कोई अज्ञानी ने ज्ञानी माने ने पूज्य गुरुदेव श्री ने ज्ञानी माने तो ते मुमुक्षु ने गुरुदेव श्री ने ओळखाण बराबर कहवाय के नहीं, बन्ने मां दोनों में गुरुदेव श्री की पहचान नहीं है। जो गुरुदेव श्री को पहचानते हैं वो दूसरे ज्ञानी को भी ज्ञानी मानेगा, अज्ञानी नहीं मानेगा, और किसी अज्ञानी को ज्ञानी भी नहीं मानेगा। दृष्टांत रूप में ले सकते हैं कि जिसको हीरे की परख है वो कांच को हीरा कभी मानेगा नहीं, कांच को जो हीरा मानता है उसको हीरा की परख नहीं है, बात ऐसी होती है। उसमें अपन पूरा प्रकरण नहीं जानते हैं इसलिए अपने को गुरुदेव पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और अभक्ति हो जाती है। घटना कोई ऐसी घटी थी लेकिन वो बात तो भीतर से पूरी पूरी घटना को जो नहीं जानते हैं और जो गुरुदेव को नहीं पहचानते हैं उनको गुरुदेव पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, लेकिन मुमुक्षु को बिना पहचाने भी ओग संज्ञान में भी ऐसा अभिप्राय रखना चाहिए कि जब गुरुदेव ने जो भी बात कही वो सही है, हम समझ नहीं सके वो अलग बात है। तो वो बात थी कोई व्यक्तिगत बात थी, वो व्यक्तिगत बात की चर्चा सभा में करनी योग्य नहीं होती, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और हमारी चर्चा का ये डिसिप्लिन रहेगा, शिस्त रहेगा कि हम किसी व्यक्ति की चर्चा कहीं भी कभी भी यहाँ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, उतना डिसिप्लिन रखना है हमको। नानी ने ओळखाण केवी रीते करवी, सवारे प्रश्न पूछनार स्वाध्याय में हता के नहीं, कोई प्रश्न कर्यो छे एक लीटी में सवारना स्वाध्याय में तो घणो विस्तार आवी गयो छे, ओळखाण केवी रीते नथी थती। ओळखाण करवा माटे मात्र जे ज्ञानी ने इच्छे छे ते ज्ञानी ने ओळखे छे, एटलो संक्षेप पण घणो छे। एटलुं विचारुं रहे छे कि मात्र ज्ञानी ने आपणे इच्छीए छीए કે જ્ઞાનીને પણ ઈચ્છીએ છીએ અને બીજા આપણા સંયોગને પણ અનુકૂળતાઓને પણ ઈચ્છીએ છીએ, આટલો વિચાર કરવાનો રહે છે। સમ્ય જ્ઞાન પહેલી ભૂમિકા કેવી હોય ને લક્ષણ એટલે કે પરિણતિ કેવી થઈ જાય, સમ્યક જ્ઞાન પહેલાની ભૂમિકા કેવી હોય એમ પ્રશ્ન છે ને, પ્રશ્ન કરનારે પ્રશ્ન જરા સ્પષ્ટ કરીએ તો યથાર્થ સમજણ એ સમ્યક જ્ઞાન પહેલાની ભૂમિકા છે જ્ઞાન અપેક્ષાએ, અને લક્ષણ એટલે કે પરિણતિ કેવી થઈ જાય, લક્ષણ એની પરિણતિ જેટલો જેવો રસ હોય એવી પરિણતિ થાય। પરિણતિ હોને કા વિજ્ઞાન એસા હૈ કે જિસકા તીવ્ર રસ હોતા હૈ ઉસકી પરિણતિ હોતી હૈ, વો એક સાયકલ જૈસી બાત હૈ, ઉપયોગ ભાવના ઉપયોગ ઓર પરિણતિ, तीव्र रस से जो भावना उपयोगात्मक होती है उसकी परिणति बन जाती है, इस तरह से उसका विज्ञान है। श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष ना अंशो वत्ता जाए चारे केवल ज्ञान था है। वो श्रुत ज्ञान में अनुभव प्रत्यक्षता का अंश बढ़ता जाता है, वो केवल ज्ञान के प्रति आगे बढ़ता जाता है। और उस विषय में समय सार के का जो कलश है 224 नंबर का है, उसमें लिखा है 224 नंबर के कलश में कि जो ज्ञान का स्वसंवेदन है वही पूर्णता को ले जाता है। नानम अतीव प्रकाशते ऐसा करके लिया है, अतीव मैंने पूरा ज्ञान, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का श्लोक है। ज्ञानस्य संचेतनया एव नित्यं प्रकाशते ज्ञानम अतीव शुद्धम। क्या कहते हैं कि ज्ञान का जो स्वसंवेदन है जो प्रत्यक्ष अंश के रूप में होता है वो अतीव, ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते, वो अतीव मैंने पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकाशन करने का एकमात्र प्रोसेस होता है, उस तरह से लेना। नहीं, वो 224 नंबर का कलश है। ज्ञानस्य संचेतनया एव, संचेतन मैंने वेदन, ज्ञान का वेदन से, नित्य मैंने लगातार रहने से, प्रकाशते ज्ञानम अतीव शुद्धम, शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है, मैंने पूर्ण ज्ञान प्रकाशित होता है। वो दो चरण में लिया है। छेल्ला प्रश्न छे ले लीजिए, टाइम तो थई गयो छे आपनो। पहलू संकेत थया पछी पोताना परिणाम मां शुं अपूर्व फेरफार थाय, वो तो चल चला। आप तो पुरुष के वचन की प्रतीति होती है, आज्ञा रुचि होती है और स्वच्छंद निरोध भक्ति होती है, वो इस प्रकार के परिणाम में फेरफार होता है। यानी सर्वार्पण बुद्धि सत्पुरुष के प्रति आती है, सर्वार्पण बुद्धि से वो सत्संग उपासता है, ऐसा फेरफार पहले संकित होने के बाद आता है। दर्शनों के परिणाम मंद होने से वैसे भी दूसरे अनेक प्रकार के गुण वहाँ पात्रता के गुण प्रकट हो जाते हैं, तो पात्रता के भी अनेक गुण हैं, वो भी बड़ा चैप्टर है। तो वो भी पहला संकित प्राप्त होने से या ज्ञानी की पहचान होने से, अपना दर्शन मंद होने से दूसरे भी मुमुक्षु की भूमिका के अनेक गुण वहाँ आनुषंगिक परिणाम के रूप में चालू हो जाते हैं, ऐसा लेना चाहिए। यहाँ तक रखें।